नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, जिंदगी एक खत का नाम है जिसकी स्याही हमारे हाथों में होती है। हम जैसा उसमें लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। उसके रंग, उसका रूप, उसकी हर एक कलाकारी हमारे हाथों में होती है। हम जैसा उसे रचना चाहे हम रच सकते हैं। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें जरूरी होती है वो होती है हमारा उसमें लिखने व कंटेंट। अगर वो कंटेंट खुशनुमा होगा, अगर वो खुशी से भरा होगा, आज अगर हम जो चाहते हैं वो उसमें हो, तो ही वो खत इंटरेस्टिंग हो सकता है और वो खत भगवान के काम आ सकता है। तो अपनी जिंदगी के खत को इतना खूबसूरत बनाइए जो भगवान भी पढ़े तो कहे क्या बात है। इसी बात से आज हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार भाई जी। नमस्कार ओमकार भाई जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में।
नमस्कार, ओम शांति।
ओम शांति भाई जी, जिंदगी क्या है? जहाँ पे हमने शुरुआत की, कोई कहता है कि जिंदगी एक खत है, कोई कहता है कि जिंदगी एक ख्वाब है, लेकिन जिंदगी एक कहीं ना कहीं एक पहलू भी है, उसके कई सारे। लेकिन सबसे बड़ा पहलू होता है खुशी का। आज जिंदगी में सबसे ज्यादा इंटीग्रेंट जिसकी जरूरत होती है वो होती है खुशी की। तो आपके हिसाब से खुशी का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बिना क्या चल सकता है?
खुशी की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में की जितनी है, आपको एक लाइन में मैं बता देता हूँ या दो लाइनों में बता देता हूँ। कहते हैं जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है।
क्या बात है।
अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है, आसान बनाना है, बेहतर बनाना है, तरीका सिंपल है कि हमें खुश रहना पड़ेगा। जब हम खुश रहते हैं, जब चेहरे पे मुस्कान आती है, तो मुस्कुराहट आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का सबसे सस्ता तरीका है। हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ। आपको कोई बॉर्नविटा खाने की जरूरत नहीं है, कोई च्यवनप्राश लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आप खुश रहना सीख लीजिए, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी।
खुशी जैसी कोई दवा नहीं,
खुशी जैसी ना कोई दवा है ना कोई खुराक है। आप तराजू के एक पलड़े में खुशी को रख दो, दूसरे पलड़े में उस लायक चीज ही कोई नहीं है जो उसके बराबरी में रखी जा सके।
बिल्कुल।
और खुशी टॉनिक भी है तो खुशी प्रॉपर्टी भी है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हैप्पीनेस है, और इंसान की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अगर कोई चीज है वो भी खुशी है। आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो गुस्से वाला हो, उदास हो, चिड़चिड़ा हो, तो वो सुंदरता का फायदा है कुछ?
बिल्कुल कुछ भी।
इंसान ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हो, लेकिन डिग्रियां लेने के बाद भी उसके चेहरे पे मुरझाइस हो, तो उन डिग्रियों को कोई फायदा है?
कोई भी फायदा नहीं।
इंसान दुनिया का सारा पैसा अपने पास कर ले इकट्ठा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, लेकिन अगर चेहरे पे उदासी हो तो उस पैसे का कोई फायदा है?
कुछ भी नहीं।
इसलिए इंसान को एक चीज अपने आप से जरूर पूछनी चाहिए कि मैं खुशी के महान वरदान से क्यों वंचित होता जा रहा हूँ। खुशी के बारे में कहते हैं कि मुस्कुराना, स्माइल इज ए कर्व विच मेक्स मैनी थिंग्स स्ट्रेट। एक ऐसा कर्व है जो बहुत सी चीजों को सीधा कर देता है। मुस्कुराना, जितना आप मुस्कुराएंगे उतनी मुश्किलें आपके जीवन में कम हो जाएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुस्कुराहट एक ऐसी ड्रेस है जो किसी भी मौसम में पहनी जा सकती है। कहते मुस्कुराता है जो, उसे देख के मुस्कुराती है दुनिया। इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए कि तुम फूल हो, फिर मुरझाना कैसा। मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई, और मायूस चेहरों के नजदीक आता नहीं कोई।
बहुत अच्छी।
इसलिए हमें जीवन में मुस्कुराना है, खुशियां दूसरों को बांटनी है। ये बिना पैसे की सौगात है, ये प्रभु का वरदान है और बिना पैसे की सौगात है, जो आप किसी को भी दे सकते हो और उससे लाखों दुआएं ले सकते हो, और वो सारे सुख जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिलते, वो आपके मुस्कुराने से मिल सकते हैं। जो जिंदगी की जो बैटरी है उसको चार्ज करने का तरीका है स्माइल, खुश रहना, खुश रहना और दूसरे को खुशी बांटना।
अच्छा।
यही जिंदगी है। जिंदगी उसी व्यक्ति के आगे सिर झुकाती है जो इस जिंदगी में खुश रहना सीख गया। यही खुशी की इम्पोर्टेंस है।
जी भाई जी, भाई जी जिंदगी में पॉजिटिविटी जिसके बारे में आज सभी कहते हैं, बहुत सारी थियोरीज लिखी गई हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं, जहां देखो वहां पे लोग खुशी और पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के बारे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किसी ने नहीं बताया। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कोई एग्जाम्पल जिससे हमें पॉजिटिविटी और ज्यादा पक्की हो जाए अंदर में?
पॉजिटिविटी के बहुत से लाइव एग्जाम्पल हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखिए, हो सकता है आपके साथ भी ऐसे एग्जाम्पल हो।
अच्छा,
मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा 2 साल पहले, अप्रैल 2011 की एक सत्य घटना है
जी,
जिसने मुझे सिखाया कि अगर हौसले बुलंद हों और इरादे नेक हों तो कोई भी मजबूरी आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उस वक्त एक ऐसी घटना हमारे भारत में घटी, अरिणिमा सिन्हा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र उस वक्त 26 साल की थी, नेशनल फुटबॉल प्लेयर थी, ट्रेन में सफर कर रही थी, बरेली के पास कुछ बदमाशों ने उसकी चेन स्नैचिंग की कोशिश की।
अच्छा।
लेकिन वो लड़की घबराई नहीं, वो लड़की बड़ी बहादुर थी, उसने क्या किया कि उनका पूरा मुकाबला किया, लेकिन उन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे के नीचे गिरा दिया।
अरे,
सामने से एक ट्रेन और आ रही थी और उस ट्रेन के उसकी टांग के ऊपर वो ट्रेन आ गई, जिसके कारण उसकी एक टांग पूरी तरह से क्रश हो गई और दूसरी टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, और हॉस्पिटल में इलाज चला तो एक टांग को कटवाना पड़ा और दूसरी टांग में भी रॉड डलवानी पड़ी। बहुत ही भयंकर हादसा था। अखबार में मैंने जब ये पढ़ी तो बड़ा अजीब हुआ कि हमारे देश में एक फुटबॉल प्लेयर, उसको भी हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उसको भी टांग कटवानी पड़ रही है, क्या सोसाइटी क्या समाज हमने बना दिया। सारा देश हैरान था, लेकिन उस लड़की की सोच कुछ और थी। वो दिल्ली में एम्स में उसका इलाज चल रहा था, तो जब वो बेड पे वहां थी तो उसने हौसला नहीं हारा जिंदगी से, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने सोचा कि लोग मुझे सोचें कि ये दयनीय है, मेरे को लोग दया की दृष्टि से सोचें, इसके बजाय मैं कुछ ऐसा काम करूंगी कि लोग मुझे उस अचीवमेंट के कारण याद करें।
जी,
बिस्तर पे लेटे लेटे उसने सपने देखने शुरू किए और उस सपने थे भारत के तिरंगे को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में लहराने के।
अच्छा,
और आपको यकीन नहीं होगा, इस घटना के 2 साल बीतने के बाद एक दिन मैंने न्यूज देखी, 21 मई 2013, मैंने अप्रैल 2011 की भी न्यूज पढ़ी थी, 21 मई 2013 की भी पढ़ी, और जब मैंने पढ़ी तो मैं तो न्यूज पढ़ के हैरान इतना हुआ, खुशी भी हुई, और उस न्यूज में लिखा था कि अरिणिमा सिन्हा ने एक पैर पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नाप दी है, उसने इतिहास बना दिया, दुनिया की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच के भारत का तिरंगा झंडा लहराया है।
क्या बात है,
जो असंभव दिख रही थी चीज, एक टांग से कैसे ऊपर पहुंचेगा, और वो भी 2 साल के अंदर, जो बड़े बड़े नहीं ये काम कर सके, उस लड़की ने करके दिखाया। किसके कारण? पॉजिटिव थिंकिंग, अपने ऊपर विश्वास कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर है वो चीज उस काम को करने की।
पर अपने आप को बिलीफ रखना, उतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना क्या आसान होता है? वो तो उन्होंने कर दिखाया, लेकिन सभी लोगों के अंदर वो सक्षमता नहीं होती है।
जब हम उस कहानी से हमने सीखा, सुना, हमें पता चला कि उसने करके दिखा दिया, अब वो भी तो इस दुनिया की व्यक्ति है, वो कोई चांद से तो उतर के नहीं आई थी, उसको भी हमारी तरह शरीर मिला है, हमारी तरह दिमाग है, 2 हाथ है, 2 कान है, सब कुछ वैसा है। वो सिंपल सी यूपी की एक गांव की लड़की या शहर की लड़की वो काम कर सकती है, उसके कितनी विपरीत परिस्थिति भी बिल्कुल अपोजिट थी, जो असंभव था
जी।
तो हमारे आगे तो इतनी बड़ी सिचुएशन तो आती ही नहीं है, इससे कम वाली आती है, लेकिन हम सोचे अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से मैंने स्कूल्स के बच्चों के देखे हैं एग्जांपल्स, गरीब से गरीब घर के बच्चे, एक पिछले साल एक मध्य प्रदेश से एक खबर आई थी, एक लड़की थी जिसको 90% दिखाई नहीं देता था।
अच्छा।
केवल 10% उसकी आंखें देखती थी और उसको पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत आती थी, और उसने प्लस टू में पूरे बोर्ड में टॉप किया।
क्या बात है।
तो जहां हिम्मत है, जहां पॉजिटिव थिंकिंग है, अपने ऊपर विश्वास है, वहां कोई भी कठिनाई, कोई भी असंभव चीज होती नहीं है। इम्पॉसिबल उनके ऐसे लोगों की डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं होता। इम्पॉसिबल अपने आप कहता है कि आई एम पॉसिबल, ये पॉसिबल है
जी।
लेकिन ऐसे वक्त पे थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है। उसके लिए अपने आप को ट्रेनिंग देने की, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करने की जरूरत रहती है
जी।
तभी हम विपरीत हालात में भी, हालात जितने भी प्रतिकूल हो उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं।
बहुत अच्छा भाई जी। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप के साथ में समझौता करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने अपने सपनों को जानने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कठिनाइयां तो आएंगी बहुत सारी, लेकिन अगर हम अपने आप को उतना सक्षम बनाए तो हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। आप यही कहना चाहते हैं
जी।
भाई जी, कहीं ना कहीं खुशी जो कि एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट आजकल हो गया है, उसे पाना और साथ में कंटिन्यूस बैलेंस्ड वे में रखना, पा तो लेते हैं हम कुछ क्षणों के लिए, चाहे वो बाहर की तरीके से या फिर अपने अंदर से क्रिएट करेंगे, लेकिन उसे कंटिन्यूस वैसे के वैसे ही बैलेंस तरीके से साथ में रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो एक खुशी और गम का जो एक इम्बैलेंस खेल हमारी जिंदगी में चल रहा है, उसे उसे कंप्लीटली बैलेंस तरीके से रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या करें जिससे वो काफी देर तक हमारे साथ खुशी रहे। एक पूरा दिन अगर मैं कहूं कि आज मुझे कुछ भी गम के संकल्प नहीं आए, ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता, क्या ऐसा कोई दिन पा सकते हैं हम लोग जहां पे पूरे दिन हम खुश रहे?
बहुत आसान है, अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा दिन खुशी से बिता सकते हैं। इसके लिए कुछ अपने को समझाने की जरूरत है, कुछ अपने आदतें बदलने की जरूरत है, अपना थॉट सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। हमारी खुशी जब गायब होती है, आप देखेंगे एक छोटा सा कारण है जो खुशी गायब कर देता है, जिसके कारण अगर हम उसके ऊपर ही ओवरकम कर लें, उसके ऊपर काम करें और उस चीज को जीत लें, तो उस खुशी सारा दिन भी रह सकती है, एक दिन भी रह सकती है, दो दिन भी रह सकती है, सदा काल के लिए भी रह सकती है।
अच्छा।
वो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। वो मान लो कोई घटना हो जाती है, कोई बात हो गई, किसी ने हमारे लिए कुछ कह दिया, हमने उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया लेकिन उसने हमारे साथ प्यार से भी बात नहीं की, हमने उसका भला किया और आज वो हमारी लेग पुलिंग कर रहा है, वो हमारी जड़ें काट रहा है, उसने हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दिया
जी।
ऐसी कोई घटना घट गई, ऐसी बात हो गई, वो बार बार हमारे मन में चलती है और जब मन में आती है तो क्या होता है, खुशी गायब हो जाती है
जी।
और वो मन में आई, अब हमारे ऊपर है कि हम उसको आधा घंटा पकड़ के रखेंगे, दो घंटा पकड़ के रखेंगे, दो दिन पकड़ के रखेंगे या सारी उम्र पकड़ के रखेंगे।
पर कहीं ना कहीं तकलीफ तो हुई है ना,
तकलीफ
तो का रिएक्शन तो हमारे अंदर आएगा,
नेचुरल है। कुछ हुआ, कुछ घटना घटी जो हमारे अनुसार ठीक नहीं थी
जी।
जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो उसका रिएक्शन आएगा, लेकिन कितनी देर तक आता है, कितनी देर हम उसको पकड़ते हैं और कितनी जल्दी छोड़ते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो मेरे हाथ में आप किताब दे दें, अब मैं उस किताब को 10 मिनट पकड़ूं कुछ नहीं होगा, आधा घंटा पकड़ूं कुछ नहीं होगा, दो घंटे हाथ में ऐसे पकड़ के खड़ा रहूं कुछ कुछ होने लगेगा। अब मैं उसी को 10 घंटे किताब को पकड़ के बैठूं तो मेरा हाथ थोड़ा सा काफी पेन करना लगेगा। मेरे को कोई कहे कि दो दिन तक आपने किताब ऐसे पकड़ के रखनी है तो मेरा हाथ हो सकता है थोड़ा क्या पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, पेन बढ़ती जाएगी।
बिल्कुल,
जितना लंबा उसको हम पकड़ेंगे उतनी ही पेन, उतना ही दुख हमें बढ़ेगा
जी।
तो वो तो है किताब को पकड़ने की बात। उसी तरह अगर हमने किसी की बात को जो हमारे अनुसार सही नहीं थी
जी,
उसको पकड़ के मन में बैठा दिया, तो जितना लंबा हम उसको मन में बैठाएंगे उतना ही हमें कष्ट होता रहेगा, और जितनी जल्दी हमने उसको छोड़ने की सोच ली तो कष्ट दूर हो जाएगा। हम कहते हैं कि हमने, उसने कहा ही ऐसा, उसकी बात ही ऐसी थी, वो मैं भूल ही नहीं सकता उस बात को, ना मैं भूल सकता हूँ, ना भूला हूँ और ना ही मेरी भूलने की कोई प्लानिंग है। मैं कैसे भुला दूं, अगर मैंने भूल गया इसका मतलब मैंने उसको माफ कर दिया
जी।
और उसने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया और मैं अगर उसको छोड़ दिया तब तो सारी बात खत्म हो गई।
बिल्कुल।
लेकिन हम सोचें कि पकड़ के मैंने रखी है बात, अब नुकसान उसका हो रहा है या मेरा हो रहा है, मैं बात को पकड़ूं, अच्छी बात है पकड़े रखो आप बात को
जी,
लेकिन अगर उसका नुकसान हो रहा हो जिसने मुझे हर्ट किया, उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा।
बिल्कुल।
नुकसान किसका हो रहा है?
हमारा हो रहा है।
हमारा हो रहा है।
बिल्कुल।
मेरा हो रहा है। तो समझदारी इसी में है कि जितनी जल्दी हम उस बात को छोड़ दें उतनी जल्दी खुशी हमारे जीवन में एक पल दो पल एक दिन दो दिन परमानेंट आ सकती है। अब वो व्यक्ति उसने कुछ कहा या उसने हमें हर्ट किया, उसने ऐसा व्यवहार किया, वो भूल गया, वो उस काम को करके चला गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसके अनुसार जो उसने कहा सही था। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार तो गलत नहीं कहता।
बिल्कुल,
उसने बोला, उसने किया और वो चला गया और भूल भी गया, और हम उसकी बात को पकड़ के उसको मन में घंटों दिनों कई कई बातें तो सारी उम्र भी नहीं बोल।
बिल्कुल बिल्कुल।
और जब जब उस बात को याद आप करेंगे आपकी खुशी गायब होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी व्यक्ति दर्द नहीं दे सकता, कोई घटना आपको दर्द नहीं दे सकती, हम खुद अपने आप को परेशान या दर्द देते हैं। तो हम उस बात को भुला दें, सोचें जो हुआ सो हुआ, मुझे उस बात के ऊपर ज्यादा नहीं सोचना है। उससे अगर कोई लेसन मिलता है वो लेसन जरूर लीजिए, बाकी पास्ट की ज्यादा बातों को मन पे ना रखिए। तो हम काफी देर तक, काफी दिनों तक, काफी सालों तक भी खुश रह सकते हैं।
बहुत अच्छा भाई जी, आपने एकदम सही बात कही कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पीछे की बातों को लेट गो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन भाई जी, कहीं ना कहीं आज हम अपनी जिंदगी में जब कुछ लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो जब हम उसे पीछे छोड़ करके आगे के दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो वो पीछे वाला जो पेन रहता है वो हमारे साथ ही चल देता है, और आगे हम उसे पीछे पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं। एक जो लेट गो होता है, एक पेन को कहा जाता है, कई बार तो वो हमारे सपनों में भी आकर के हमें तकलीफ देता है। ऐसे ख्वाब जो पूरे नहीं हो पाए, उन ख्वाबों के बारे में हम क्या करें, उन्हें कैसे अपने आप से पूरी तरह से अलग करें?
हमारे ख्वाब हमने देखे कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हो और वो पूरा नहीं हुआ
जी,
और वो आप कह रहे हैं कि वो सपने में भी आता है,
कई बार सपनों में आता है, कई बार हमारी जिंदगी में पूरी तरह से उसको तहस नहस कर देता है, क्योंकि हम उससे इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं, इतना ज्यादा हमारे अंदर वो घर कर चुका है कि हमारे अंदर से वो निकलना ही नहीं चाहता। और फिर हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि जिंदा तो रहना है, आगे तो बढ़ना है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि सुसाइड करके उस चीज को खत्म कर दें। अपने साथ में उस चीज को पीछे, वो दर्द को पीछे रख करके और आगे कैसे बढ़ करके खुश रहें?
एक बात तो है कि दर्द वाली बात जो मैंने आपको बताई
जी,
कि दर्द वाली बात को आपने भुलाना है
जी,
वो तो मैंने काफी आपको बता दिया कि उसको भुलाना ही पड़ेगा
जी,
उसको मन में लाना नहीं पड़ेगा। जो किसी का गलत व्यवहार था वो नहीं हुआ जो हम चाहते थे। दूसरी आपने बात कही कि हमने कुछ ख्वाब भी देखे थे
जी,
अब वो पूरे नहीं हुए, काफी हम उनसे जुड़े हुए थे, बहुत सी इच्छाएं हमने मन में रखी थी, ये मिल जाता वो मिल जाता, अब वो मिला तो है नहीं, इसलिए बार बार वहां भी दिमाग जाता है, लगता है कि हमें ये चीज मिली नहीं, मिलनी चाहिए थी। सिंपल सी इसमें भी पॉजिटिविटी को आप लाइफ में ले आइए। एक जगह मैं ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पे गया, बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा था वहां पर, लिखा था कि भगवान वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वो देता है जिसमें आपका अच्छा होता है।
क्या बात है,
तो हम बड़ी इच्छाएं बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, असंतुष्ट से रहते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि भगवान अगर हमें अभी नहीं दे रहा, इसका मतलब वो हमें बाद में जो हमने मांगा था उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़िया देने वाला है, और आपका विश्वास आपको बढ़िया दिलाएगा। अगर आप दूसरे की कामयाबी को देख के परेशान नहीं होना चाहिए कभी भी। हो सकता है आप महल बना रहे हो और उसने मकान बनाए हो, मकान बहुत जल्दी बन जाते हैं, महल बनाने के लिए टाइम लगता है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं तो समझ लीजिए आप महल बना रहे हैं, महल एकदम नहीं बनता, महल बनाने के लिए टाइम
लगता है,
उसके लिए धीरज रखना पड़ता है, पेशेंस को लाना पड़ता है। इसलिए दूसरों को देख के घबराइए मत, दूसरों को देख के परेशान भी मत होइए। लोगों का अपना भाग्य है, मेरा अपना भाग्य है, अगर कोई चीज मुझे नहीं मिली कोई बात नहीं, उससे भी बढ़िया चीज मुझे मिलेगी। या आप ये भी सोच सकते हो कि अगर आपको जो आपने चाहा वो नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि आपका आपको उसका ना मिलना ही आपके हित में है।
अच्छा, वो कैसे?
मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए
जी,
वो क्लर्क का इंटरव्यू था, आपने सवेरे से शाम सारा दिन भगवान से मांगते रहे कि भगवान मुझे नौकरी दिला दे, नौकरी दिला दे, मैं क्लर्क लग जाऊं, और जिस दिन आपका रिजल्ट आया आप सिलेक्ट नहीं हुए
जी,
और अब आप कह रहे हैं जी मैं तो, मेरे को जो चाहा था वो मिला नहीं, भगवान ने वो दिया नहीं। अब भगवान ने आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान आपको क्लर्क नहीं, आपको एक मौका और देख के थोड़ी और मेहनत करा के आपको ऑफिसर लगाना चाहता है।
अच्छा,
आपको बहुत बड़ी पोस्ट देना चाहता है, हो सकता है कल आपको आपकी काबिलियत एक आईएएस ऑफिसर बनने की हो और आप एक क्लर्क के लिए माथा मार रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्लर्क ही बनना चाहते हैं या उससे ऊपर भी कुछ बनना चाहते हैं। लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे देश के बहुत बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन रेडियो में नौकरी के लिए गए थे और उनकी आवाज देख के उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये रेडियो में आपकी जॉब, आपके लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगर वो रेडियो में ही जॉब मिल जाती उनको तो आज वो क्या होते,
सिर्फ एक रेडियो जॉकी बन के रह जाते।
बिल्कुल सही
जी।
इसलिए हम सोचते हैं कि जो चीज हम मांग रहे हैं हो सकता है बहुत छोटी हो, जो चीज हम चाह रहे हैं वो बिल्कुल मामूली सी चीज हो
जी,
और भगवान किस्मत भाग्य हमें बहुत ज्यादा देना चाहता है। तो इस तरह से अगर इस चीज को हम लें तो हमारा हित होगा, होगा और होगा ही।
क्या बात, बहुत अच्छा। तो मन में अगर पॉजिटिविटी हो, अगर ये सोचे कि भगवान जो दे रहा है वही हमारे लिए सही है, हम जो चाहते हैं वो तो चलता रहता है, वो तो जिंदगी भर हमारा इच्छाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो असली लक्ष्य है हमारी जिंदगी का वो है भगवान की इच्छा को पूर्ति करना। भाई जी, जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे मन पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मन जो है एक घोड़े के समान हो गया है, हम जब चाहे जहां चाहे उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक लगाम लगाना जैसे नामुमकिन सा होता जा रहा है, तो क्या करा जाए, कैसे उस पे लगाम लगाया जाए और अपने हित में किया जाए?
सबसे बड़ी बात है कि मन को हमें अपना दोस्त बनाना है। मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, मन को बहुत दुष्टर नहीं है, मन कोई खराब चीज नहीं है। मन को हमने गार्डन बनाना है, मन को जंगल नहीं बनाना है। और गार्डन आपको पता हो कि उगाया जाता है
जी।
और जंगल अपने आप उग जाता है। तो हमें कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी गार्डन बनाने के लिए। अब हम जब किसी को कहते हैं कि मन को सुधारना है, मन को लाइन पे लाना है, मन चंचल है, भाग जाता है, थॉट्स हमारे अनुसार नहीं आते, हम लोगों को कहते हैं कि मन को हमें लाइन पे लाना है, उसके लिए क्या करें? तो लोग मन को रोकना है, बहुत जल्दी दौड़ रहा है घोड़े की तरह, जैसा आपने कहा चंचल हो गया है। अब इस मन को रोकना है, क्या हम मन को रोक सकते हैं? मन का काम क्या है सबसे पहले तो ये जान लें। मन में क्या चलते हैं? विचार, थॉट्स, आइडियाज, और वो विचार चलते रहते हैं, कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता रहता है
जी।
क्या हम अपने विचारों को रोक सकते हैं? मान लो मैं कहूंगा आपको कि आपने 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, आपने सिंपल सा काम है 10 सेकंड आपने बैठ जाना है और कुछ भी नहीं सोचना, और फिर मैं उसके बाद आपसे पूछूं कि आपने ये काम कर लिया या नहीं कर लिया। अगर आप कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे तो ये तो जरूर सोचा होगा आपने कि मैंने कुछ नहीं सोचना, या मैंने बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, तब भी एक थॉट तो रहा ही होगा ना। कुछ ना कुछ आदमी सोचता जरूर है, इसलिए मन को रोक नहीं सकते हम, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स की संख्या को कम कर सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरा आपको काम दूं कि आपने सब कुछ सोचना है, जो मर्जी आए सोचो
जी,
लेकिन बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो क्या होगा?
बंदर ही,
जैसे ही बंदर को आप भगाएंगे बंदर दौड़ता हुआ दोबारा आ जाएगा, कभी एक टहनी पे उछलेगा, कभी दूसरी टहनी पे उछलेगा, कभी आपकी रोटी छीन के ले जाएगा। तो जो जो बंदर के सीन आपने देखे होंगे सब याद आ जाएंगे
फट से।
तो मतलब मन का नेचर क्या है? मन की नेचर है कि आप उसको जिस काम के लिए रोकेंगे वही करेगा। बचपन में आपको याद होगा जब आपने साइकिल चलाना ग्राउंड में सीखी होगी, कोई व्यक्ति धक्का दे रहा होगा पीछे से, फिर उसने छोड़ दी होगी साइकिल, फिर आप आगे चला रहे होंगे हैंडल बड़ा जोर से पकड़ के, सामने एक व्यक्ति आ रहा होगा, आपने सोचा कि मैंने उसको बचाना है, उसको टक्कर नहीं मारनी है, आप जोर से मन में बार बार सोचोगे उसे बचाना है बचाना है, हैंडल जोर से पकड़ोगे और एंड में क्या होगा कि उसी को टक्कर मारोगे। कई बार ऐसा होता है,
सही बात है।
क्योंकि मन का स्वभाव है, आप इसको जिसके लिए रोकेंगे वो करेगा। इसलिए आप ये कहें कि मैंने गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, मैंने मन को ये करना है, नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स को मिनिमाइज करना है, फालतू की थॉट्स को खत्म करना है, उन विचारों को नहीं लाना है, तो तरीका है कि हम अच्छे अच्छे विचार अपने मन में स्टॉक में रखें
जी।
अपनी जेब में जैसे पैसे होते हैं ना, ऐसे हमारी जेब में, हमारे मन रूपी जेब में अच्छे विचार होंगे ना, तो हम सदा मुस्कुराते रह सकते हैं। अच्छे विचारों को अपने पास लिख के रख लो, डायरियां भर लो, डायरी में नहीं लिख सकते, मन रूपी डायरी में लिख लो कि ये थॉट मुझे मन में लाना है ऐसी ऐसी सिचुएशन में, तो आपका मन भी मुस्कुराएगा, आपका मुख भी मुस्कुराएगा और जिंदगी इतनी खुशहाल बनेगी कि बात मत पूछो।
क्या बात। तो भाई जी, आज आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। सबसे अच्छी बात आपने कही कि मन भी मुस्कुराएगा और तन भी मुस्कुराएगा और जीवन भी मुस्कुराएगा। आज हमारी जिंदगी में खुशी रहना बहुत बड़ा एक कार्य हो गया है। उसके लिए आपने इतनी सारी मीठी मीठी बातें बताई, हम जरूर अपनी जिंदगी में इसको प्रयोग करेंगे। आज आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें हम जिंदगी में बिल्कुल अपने साथ लेकर चलेंगे। नमस्ते।
नमस्कार
दोस्तों, जिंदगी खुश रहने का नाम है। जितना हम खुश रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। तो अपनी जिंदगी से कांटों को निकालिए और फूल उगाइए। क्यों? क्योंकि फूल ही खुशबू देते हैं, कांटे नहीं। इसी बात से कल फिर मिलेंगे इसी समय आपके शो जिंदगी बने आसान। नमस्ते। ओम शांति।